हरे कृष्णा। तो हम लोग स्वागत करते हैं कृष्ण प्रिय प्रभु जी का हृदय से, जो हम सबको भागवत कथा का अमृत का पान कराने आए हैं। और साथ ही में हम स्वागत करेंगे हरिद्वार से आए भक्त हिज ग्रेस जय जगदीश प्रभु जी का, और उनके साथ आए हिज ग्रेस रमन गिरधारी प्रभु और करण प्रभु का। तो आइए इन सब भक्तों का हम स्वागत करें हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। कृपया करके मेरे मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट पे करिए, और बहुत ही ध्यान पूर्वक भागवत संदेश का लाभ उठाइए। हरे कृष्णा।
थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9। स्कंद का शीर्षक है राजा ययाति को यौवन की पुनः प्राप्ति, और अध्याय 18 है, श्लोक संख्या है 26 और 27। तो 27 का तात्पर्य है, 27 बोर्ड पे लिखा है। ओह थैंक यू नाम प्रभु। और 26 का हम अनुवाद पढ़ेंगे और फिर 27 को इकट्ठे हम बोलेंगे। तो 26 का अनुवाद है, राजा वृषपर्वा समझ गया कि शुक्राचार्य उसे प्रताड़ित करने या शाप देने आ रहे हैं। फलस्वरूप इसके पूर्व कि शुक्राचार्य उसके महल में आए, वृषपर्वा बाहर आ गया और मार्ग में ही अपने गुरु के चरणों पर गिर पड़ा तथा उनके रोष को रोकते हुए उन्हें प्रसन्न कर लिया। हम ये पढ़ेंगे। क्षिणार्धमन्युर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामोऽस्याः क्रियतां राजन् नैनां त्युक्तुम् इहोत्सहे। क्षिणार्दमन्युर्भगवान् शिष्यव्याचष्ट भार्गवः कामोऽस्याः क्रियतां राजन् नैनां त्युक्तिम् इहोत्सहे। क्षिणार्दमन्युर्भगवान् शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः कामोऽस्याः क्रियतां राजन् नैनां त्युक्तिम् इहोत्सहे। आप लोगों से प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पास आइए ना। मैं तो आप सब लोगों के दर्शन करने आया हूँ इतनी दूर से। आप दूर दूर रहेंगे तो दर्शन कैसे होंगे। पास आ जाइए और पास आइए ना, ये आगे जगह खाली नहीं रखे। आप इधर आओ, शाबाश प्रभु जी, आप इधर आओ ना, कुर्सी ले आओ, चाहे अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो पास आ जाओ, लेकिन शाबाश। थैंक यू वेरी मच। आओ आप भी आ जाओ प्रभु जी, आपके पीछे छुप गए वो तो दर्शन ही नहीं होंगे। इधर आ जाओ, पास में आओ ना, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु के पास आओ, बहुत अच्छा लगेगा, इनकी वाइब्रेशंस बहुत। इधर आओ पास में आओ, इधर आओ, शाबाश, वेरी गुड, थैंक यू। तो इसका शब्दार्थ और अनुवाद करते हैं। क्षण अर्धा कुछ क्षण, मन्यु क्रोध, भगवान अत्यंत शक्तिशाली, शिष्य अपने शिष्य वृषपर्वा से व्याचष्ट कहा, भार्गवः भृगुवंशी शुक्राचार्य से काम इच्छा, अस्या इस देवयानी की क्रियताम पूरी करो। जय सुदलेस माधुर्य गोविंद महाराज की। जय महाराज जय। राजन हे राजा, ना नहीं एनाम इस लड़की को तियुक्ताम त्यागने के लिए इह इस संसार में उत्साहे समर्थ हूं। अनुवाद। शक्तिशाली शुक्राचार्य कुछ क्षणों तक क्रुद्ध रहे, किंतु प्रसन्न हो जाने पर उन्होंने वृक्ष परवा से कहा, हे राजन, देवयानी की इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि वह मेरी पुत्री है और मैं इस संसार में न तो उसे छोड़ सकता हूं न उसकी उपेक्षा कर सकता हूं। तात्पर्य, कभी कभी शुक्राचार्य जैसा महापुरुष अपने पुत्र पुत्रियों की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र पुत्रियां स्वाभावतः पिता पर आश्रित रहती हैं और पिता का उन पर स्नेह होता है। यद्यपि शुक्राचार्य जानते थे कि देवयानी तथा शर्मिष्ठा का झगड़ा बचकाना है, लेकिन देवयानी के पिता के रूप में उन्हें अपनी पुत्री का पक्ष लेना पड़ रहा था। यद्यपि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, किंतु स्नेहवश विवश थे। उन्होंने यह स्पष्टतः स्वीकार किया कि उन्हें राजा की कृपा की याचना नहीं करनी चाहिए थी, किंतु पुत्र पुत्री स्नेह के कारण वे ऐसा करने से अपने को बचा नहीं पाए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नम विष्णुपादाय। हरे कृष्णा। तो बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है शर्मिष्ठा और देवयानी के बीच। आपको कथा तो याद ही होगी, क्या कथा चल रही है। देवयानी जो है शुक्राचार्य की बेटी है और शर्मिष्ठा राजा की बेटी है। तो ये जब स्नान करने जाते हैं और स्नान के बाद क्या है कि एक दूसरे, क्योंकि सभी कपड़े तो इकट्ठे पड़े होते हैं, जब स्नान करने जाते हैं सब इकट्ठे पड़े होते हैं, तो शर्मिष्ठा जो है देवयानी के कपड़े डाल लेती है। वो तो देवयानी को बहुत गुस्सा आता है, कहते तुम, क्योंकि वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, तो वो सोचते कि मैं तो ऊंची जात की हूं, ब्राह्मण हूं, ये छोटी है, कैसे इसने डाल लिया। तो आपस में बहुत झगड़ा होता है उनका, बहुत झगड़ा होता है। पहले तुम उसको ये बोलते हैं, तू कौवे है, तुम घी उठा के लेके जा रहे हैं। वो बोलती है, तुम कुत्ते हो, हम पालते हैं तुम्हें, कुत्ते कुतिया हो तुम, हैं हमारे एक टुकड़ों में पलते हो, हम तुम्हें खाना नहीं दें तो भूखे मर जाओ तुम। ऐसे लड़ाइयां करते हैं, लड़ाइयां करते करते जैसे होता है गुस्सा आता है, फिर धाड़ धाड़ शुरू हो जाती है, कुटाई शुरू हो जाती है, बाल पकड़ के, है ना, जैसे लड़कियों में बाल पकड़ लेते हैं। वो आखिर में उसको इतना गुस्सा आता है शर्मिष्ठा को, वो उठा के देवयानी को कुएं में डाल देती है। वो सोचती है कि मेरी तो जीत हो गई। वो बड़े गर्व से ऐसे चलती है मेरी सहेलियों के साथ, मैं तो राजकुमारी अपने महल में एंटर करती है कि अच्छा उसको सबक सिखा के आ रही हूं, मेरे से लड़ती थी हैं, अब समझ आया कौन हूं मैं, है सबक सिखा के आ रही हूं। उसको पता नहीं मुसीबत मोल ले लिया उसने, है क्या आगे होने वाला है इसके कारण। हम सोचते नहीं है, कई बार गुस्से में आ गए ऐसा कार्य कर जाते हैं, सोचते नहीं है। तो उधर से फिर आपको पता है कि वो ययाति राजा, ययाति जो है वो घूमते घूमते आते हैं और वो हाथ पकड़ के उसको निकालना चाहते हैं। अब देवयानी कहती है तो हाथ पकड़ा तो छोड़ूंगी थोड़ा, पानी ग्रहण कर लिया आपने, पानी ग्रहण ना, हाथ पकड़ लिया मेरा, ग्रहण कर लिया, अब तो पानी ग्रहण होना चाहिए पक्का। तो वो कहेगी मैंने आपको मैंने छू लिया है, अब मैं और किसी से शादी नहीं कर सकती, अब शादी करो मेरे से। तो राजा ययाति भी सोचते हैं कि ठीक है, तो शादी के लिए जब बात चल रही है, थैंक यू, तो शादी के लिए वो भी राजी हो जाते हैं। और इधर जब वो आके बताती है, देवयानी शुक्राचार्य को बताती है, और थोड़ा सा और मसाला लगा के हैं, ऐसी नहीं, उसने ये कहा और आपको भी उसने कुत्ता कहा, पता है मुझे तो बोला ही बोला, आपको कहा कुत्ते हो, अब बताओ हमारे सारे परिवार को ऐसे बोला उसने। तो शुक्राचार्य जी को गुस्सा आ जाता है, अच्छा गुस्से में बन बनाते हुए आप देखते हैं ना ताव, और राजमहल की तरफ चल पड़ते हैं। और उसको भी पता लग जाता है, राजा को वृक्ष परवा को पता लग जाता है कि आ रहे हैं, वो भी घबरा जाते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाएगी, वो भी भागते हैं बेचारे राजमहल से बाहर ही आके पूर्ण दंडवत प्रणाम करते हैं, चरणों को पकड़ लेते हैं। गुस्सा तो उनका शांत हो जाता है, लेकिन फिर वो बोलते हैं कि देखो आपको मेरी बेटी की बात तो माननी पड़ेगी, जो वो कहेगी वो तो आपको बात माननी पड़ेगी। तो प्रसंग यहाँ पे आ गया, अब यहाँ तक प्रसंग आ गया, आगे फिर और चलेगा, लेकिन अभी तो यही है कि वो कह रहे हैं कि आपको मेरी बेटी की बात माननी पड़ेगी। और वो सोचते हैं कि कोई शाप ना दे दें और कोई मुसीबत में ना फंसे तो अच्छा है, जो कहेंगे मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा जो जो आपकी बेटी कहेगी मान लेंगे। तो फिर खैर उसकी बेटी आगे पढ़ोगे आप, आगे वो मांगेगी कि जब भी मैं जहां भी जाऊं ये दासी बन के जाए मेरी, ये शर्मिष्ठा दासी बन के जाए और अपनी सारी सहेलियों के साथ, ये है ना, ये तो है ईगो, वार ऑफ ईगोस, इन वार ऑफ ईगोस द वन हु विंस एक्चुअली लूजेस, एक कहावत है ये, वार ऑफ ईगोस है ना, उसकी अपनी ईगो होती है, मैं ब्राह्मण हूं होती है, मैं राजा हूं क्षत्रिय है ना। तो यही लड़ाई की यही जड़ है, लड़ाई की जड़ क्या है, ईगो। और फिर उसकी जो तरफ करते हैं, जैसे मैंने एक वकीलनी से पूछा, वकीलनी आई हमारे, यंग वकीलनी थी, हमारे मंदिर में आई, बात हुई, हाँ क्या करते हो, एडवोकेट हूँ, वेरी गुड, अच्छा। तो मैंने कहा कि आप डाइवोर्सिस के केस तो देखते होंगे, हाँ बहुत डाइवोर्सिस के तो केस आम है। तो मैंने कहा क्या आपका क्या निष्कर्ष है, पता है उसने क्या बोला, कहती मेरी फाइंडिंग्स ये हैं कि ज़्यादा डाइवोर्सिस जो है हस्बैंड वाइफ की लड़ाई के कारण नहीं होते, पेरेंट्स के कारण होते हैं, पेरेंट्स बीच में कूद पड़ते हैं, अगर पेरेंट्स उनको छोड़ दें अपने हाल में तो डाइवोर्सिस नहीं होंगे, समझे। जैसे क्योंकि अब जैसे रोते रोते गई, ऐसी लड़की रोते रोते जाती है अपने घर, ये कहा मुझे, वो कहा, ऐसे कहा, वैसे, आपको भी ये कहा, गुस्सा मुझे ये कहा, अच्छा, वो गुस्से में वहां पहुंच जाता है दोनों में, वो बेटा जो है उनको लगा भड़काता है जाके, देखो क्या करती है, आपका कोई ध्यान नहीं रखती, सेवा नहीं करती, ये वो, दोनों भड़क जाते हैं और लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। उसका ये वेरा वर्डिंग ने उसकी ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, कहते अगर मां बाप बीच में ना आए ना तो आधे डिवोर्स हो ही ना, क्योंकि इन्फ्लेट करते हैं ना, वो अपना ग्रुप ढूंढता है, वो अपने अकेले अकेले तो क्या लड़ेंगे, कितनी देर तक लड़ेंगे। तो लड़ाइयों की जड़ यही है, तो इसीलिए हमें भी यहां से ये सीख लेनी चाहिए कि जब भी कोई हमारे पास ऐसे आए भड़काए हमें आके, है ना, तो हमें भड़क नहीं जाना चाहिए, मुझे याद आ रही है घटना हिजोलनेस जय पताका स्वामी महाराज की, उनके शिष्यों ने सुनाई थी, क्या हुआ कि सुनी होगी आप लोगों ने, कहीं ने सुनी होगी, क्या हुआ कि वहां नवद्वीप में वो कुछ जो उनके जयपताका स्वामी महाराज के शिष्य हैं वो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, बिग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे किसी ऐसी जगह पे, तो पुलिस वाले जो है उनको पकड़ के ले गए, पुलिस वाले पकड़ के ले गए और कस्टडी में वो डाल दिया, अंदर बंद कर दिया उनको। इधर जयपताका स्वामी महाराज को पता लगा तो वहां पे ना नवद्वीप में कलकत्ता में मायापुर में बड़ा दबदबा है इस्कॉन का, इस तरह का नहीं है वहां, तो इस्कॉन को बहुत, आप एयरपोर्ट भी जाओ सब जानते हैं, और जयपता गोस्वामी महाराज को तो सब जानते हैं वहां पे। तो उन्होंने फोन किया तो जयपता गोस्वामी महाराज एकदम आए, तो शिष्यों ने सोचा तो अब तो आ गए हमारे पिताजी आ गए, अब देखो अभी पता लगता है ये पुलिस वाले को ACP DCP बना हुआ है, अभी इनको बताते हैं। और जयपता गोस्वामी महाराज ने बताया क्या किया, सीधा जाके पुलिस वालों को प्रणाम किया जाके, और कहा कि इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं, इनसे गलती हो गई है, प्लीज प्लीज इनको माफ कर दो। नहीं समझ में आई बात, ऐसे हमें करना चाहिए, ऐसे हमें भी करना चाहिए, हमें भी ऐसे भावुक नहीं हुए वो। ऐसा नहीं है कि वो अपने शिष्यों से प्रेम नहीं करते, अथाह प्रेम करते हैं, हमारे माता पिता भी इतने प्रेम नहीं करते होंगे जितने, लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं है कि धृतराष्ट्र की तरह महाभारत खड़ी कर दो, इसको प्रेम नहीं कहते, इसको मोह कहते हैं, है ना। मोह का था ना उसको, क्या था, मोह था उसका भी, कितनी बड़ी महाभारत खड़ी कर दी उसने पुत्र मोह के कारण, मेरा बेटा। तो इन चीजों से हमें ऊपर उठना है, यही लड़ाइयों की जड़ है, सच यही लड़ाइयों की जड़ है, है? अपनी ईगो, मैं ईगो ही तो है इन दोनों में, ईगो बता रही है वो कह रही है मैं ब्राह्मण हूं, वो कह रही है मैं राजा हूं, ऐसे ही हम सोचते हैं मैं प्रेसिडेंट हूं, जानते नहीं हो कौन हूं मैं, प्रेसिडेंट हूं, कहां के प्रेसिडेंट हो भाई, पंजाबी बाग का कौन सा प्रेसिडेंट है, यहां तो कोई MLA होता है, कोई दूसरे MP हो, पंजाबी बाग का प्रेसिडेंट, और पंजाबी बाग टेंपल का, वो टेंपल कौन सा टेंपल, टेंपल तो बहुत सारे हैं यहां पे, पंजाबी बाग टेंपल कौन सा, हो इस्कॉन टेंपल नहीं देखा तुमने क्या, मतलब एक, हाँ ऐसे ही हम अपने आप को बनाए बैठे हैं बड़े, कहां है बड़े, हम कितनी बड़ी दुनिया है, कहां है। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, वो भी कोई इस तरह से ही बात कर रहे थे, थोड़ी सी ना पफ्ड अप कुछ बात कर रहे थे हम, मुझे आपको याद है प्रभु जी ऐसे कुछ बात कर रहे थे वृंदावन में, तो प्रभुपाद जी ने कहा वो सारे लाए, वो जो सारा ब्रह्मांड का ना वो लेके आए, ब्रह्मांड का नक्शा नहीं होता, देखते नहीं हो जो सारे दिखाते हैं गोलोक का, है ना, दिखाते हैं ना, तो उसमें उसको कहा अच्छा बताओ इसमें जो है हमारा वो भूलोक कहाँ है, भूलोक, तो दिखाया छोटा सा भूलोक है इतना सा, अच्छा ये भूलोक में भारत कहाँ है, भारत, उसमें भी ओवर पॉइंट छोटा हो गया बिल्कुल, है कितना भी उसको एक्सपेंड करो, अच्छा भारत में ये वृंदावन कहाँ है, वृंदावन, और वृंदावन में ये कृष्ण बलराम टेम्पल कहाँ है, वो कृष्ण बलराम टेंपल में ये गेस्ट हाउस कहां है, वो गेस्ट हाउस में कमरे में तुम पड़े हुए हो, ये तमाल कृष्ण महाराज को बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। तो मतलब हमारा कहां है, उतनी लड़ाइयां करते हैं, हम सोचते हैं कितने बड़े हैं हम, कितने बड़े हैं, कहां बड़े हैं, जो सबसे बड़े हैं ब्रह्मांडों के मालिक हैं वो तो यहां खड़े हैं, वो तू चुपचाप खड़े हैं यहां पे, हैं दर्शन दे रहे हैं सबको, वो सारे ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उनकी भ्रुकुटी ऐसे करने से समुद्र में हलचल हो जाती है, हैं उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, हैं सच बात है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता नहीं हिल सकता उनकी इच्छा के बिना, वो तो खड़े हैं यहां से प्रेम पूर्वक सबको अपना कृपा बांटने के लिए, और हम जो इतने क्षुद्र हैं कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है, है ना, कोई उम्र भी नहीं हमारी ज्यादा, 100 साल की उम्र क्या है, सतयुग में तो मनुष्य ही लाखों साल जीता था, और देवता कितने, ब्रह्मलोक में लोग जो हैं और सारे देवताओं में कितने लोग जीते हैं, हमारी है क्या 100 साल की उम्र नहीं है हमारी, इतने बड़े बड़े हम अपनी ईगो लेके घूम रहे हैं, यही जो है हमारे बीच में और भगवान के बीच में एक दीवार है, अगर ये हमारी ईगो खत्म हो जाती है तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे हमारे कण कण में, है ना, जैसे हिरण्यकशिपु है, क्यों नहीं उसको दर्शन, हिरण्यकशिपु पूछ रहा है प्रहलाद से कहां है तेरा भगवान, भगवान भगवान करता रहता सारा दिन, कहां है भगवान तेरा, वो कहते हैं पिताश्री वो तो कण कण में विराजमान है, हर जगह उनको हर जगह भगवान नजर आ रहे हैं, प्रहलाद महाराज को हर जगह भगवान नजर आ रहे हैं, और हिरण्यकशिपु को कहीं भगवान ही नजर आ रहे, तो जब हम इतनी ईगो लेके अपने चलेंगे तो कहां भगवान के दर्शन होंगे हमें, तो रियलिटी क्या है कि हम भगवान के अंश हैं, क्षुद्र अंश हैं, और हमारा जो स्वभाव है भगवान का नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और इसी सेवा में हमें लगना है। इस सेवा में जब हम लगेंगे तो फिर जो है हम ये लक्षणों को प्रकट कर पाएंगे। महापुरुष जैसे बताया ना, कभी कभी शुक्राचार्य जैसे महापुरुष अपने पुत्र पुत्रों की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि पुत्र पुत्रियां स्वभावतः पिता पर आश्रित रहती हैं और पिता का उन पर स्नेह होता है। सच बात है ये, लेकिन परम पिता भी तो है हमारे, पिता के पिता भी तो हैं। पिता का स्नेह होता है पुत्र पुत्रियों पे, तो पिता के जो पिता हैं उनका तो स्नेह ज्यादा होता है, नहीं क्या? क्या बोलो, किसका किसका? दादाजी का। पिता के जो पिता हैं वो तो कहते हैं जी, कहावत है ना, वो ब्याज जो है मूल तो भी ज्यादा प्यारा लगता है, पंजाबी में कहते हैं, मतलब पोते पोतियां जो है ना वो बच्चों से ज्यादा प्यारे लगते हैं। सच बात है, है? और अगर ब्याज के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज हो, मतलब बच्चों के आगे बच्चे हो जाए, फिर आप समझ गए, पर नाना जैसे, वो तो और भी अच्छा लगेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है जी, नहीं समझ में आई बात, वो कितना अच्छा लगेगा। जैसे हम जो है भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए, हम हमारी जनरेशन जो है, नहीं हमारे गुरु महाराज, ये हमारे दादा गुरु भक्ति सिद्धांत महाराज को कितने प्यारे हो गए हम, बहुत ज्यादा। भक्ति सिद्धांत महाराज तो हालांकि इतने सख्त थे, बहुत सख्त आचार्य थे, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ब्याज का ब्याज। तो इसी तरह से भगवान को कितने प्यारे, आप आगे बढ़ाते चले जाओ, परम पिता जो है कहां खत्म होती है, यहां राधा राधिका रमन, ये कितना स्नेह करते होंगे हमें, कितना स्नेह करते होंगे, जरा अंदाजा लगाओ। ये भूलते हैं हम, ये मिसिंग है, मिसिंग पॉइंट ये है कि ये भूल गए हैं हम कि वो ब्रह्मांडों के जो मालिक हैं सारे, और हमारे परम 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 पिता हैं जहां से सारी सृष्टि आई, वो हमें कितना प्यार करते होंगे। भागवतम में आपने पढ़ा होगा, जब चौथे स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आती है, तो ध्रुव महाराज अब जाते हैं अपनी माता की आज्ञा पालन करके जंगल में, तो वहां पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भगवान है वो इतना प्रेम करते हैं, इतना स्नेह देते हैं कि हजार माएं मिलके भी उतना स्नेह नहीं दे सकती, हजार, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। मां का स्नेह सबसे ज्यादा माना गया है, सबसे ज्यादा इस संसार में, इसीलिए हम स्त्रियों को माता जी बुलाते हैं, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, कई लोग बुरा मान जाते हैं, मैं तो आपकी बेटी के समान हूं, मुझे माता जी क्यों बुला रहे हो, वो ये समझते नहीं है कि मां का भाव जो है बहुत बड़ा आदर है, बहुत बड़ा आदर है, इससे बड़ा आदर आप किसी स्त्री को नहीं दे सकते, मां जब बुलाते हो आप उसको, मतलब जननी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान का जो प्रेम है हमारे प्रति, हजारों माओं से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, ये हमें स्वभाव है उनका, ये स्वभाव है, जैसे यहां लिखा है पुत्र पुत्रियों का स्वभावता पिता पर आश्रित रहती हैं और पिता का उन पर स्नेह होता है। तो इसी तरह से जब हम भी भगवान के आश्रित रहेंगे तो भगवान का स्वभावता हमारे प्रति प्रेम है, स्वभावता। और आश्रित रहने का क्या मतलब, कैसे आश्रित रहेंगे भगवान पे, कैसे आश्रित रहेंगे हम, क्या मतलब? वेरी गुड, भगवान का नाम लेके, है क्या नहीं, भगवान का नाम बहुत प्रेम से लेना चाहिए हमें। इस कलयुग में भगवान पे आश्रित होने का मतलब है भगवान के नाम के ऊपर आश्रित होना, क्योंकि भगवान का नाम जो है भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। कैसे भगवान से ज्यादा, कैसे? कैसे कहते हैं ना, अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। कैसे हरि का नाम बड़ा है, आपके हृदय की जब सफाई नहीं होगी ना, तो भगवान तो बाहर खड़े हैं देख रहे हैं कि कब इसका हृदय साफ होगा, लेकिन जो भगवान के नाम है ना, वो ये नहीं इंतजार करते कि साफ कब होगा, वो तो झाड़ू पोछा लेके घुस जाते हैं हृदय में, सफाई शुरू कर देते हैं, समझे आप? कौन सफाई करते हैं? भगवान के नाम। तो बड़े हो गए कि नहीं, बड़े हो गए कि नहीं? भगवान का नाम जो है ज्यादा कृपालु हो गया कि नहीं? ज्यादा भगवान तो इंतजार कर रहे हैं कब सफाई होगी, तब मैं इस हृदय में आके विराजमान होऊंगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जब इस हृदय से जाएगा तब मैं यहां वास करूंगा। भगवान का नाम तो पहले घुस जाता है, है? प्रभु जी क्या? भगवान का नाम जो है भगवान से भी ज्यादा कृपालु है। इन्होंने अच्छी बात बोली। तो आश्रित आश्रित हमें होना है इस भावना में कि भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जिस हालात में भगवान ने रखा है वो बेस्ट है, बेस्ट दी बेस्ट। भगवान की अपनी एक योजना है। जैसे एक औरत जो है खाना बना रही थी, खाना बना रही थी भगवान के लिए प्रसाद, तो उसने साफ साफ जो है ना बीन्स, वो तो उसने भगवान के लिए सब्जी बनाने के लिए अलग कर लिए, और जो गंदे हैं बेकार हैं सब्जी के हिसाब से उसको उसने बाहर खिड़की से आंगन में फेंक दिया। तो थोड़े दिनों में, बरसात का मौसम था, थोड़े दिनों में देखा कि वहां तो बड़े सुंदर सुंदर पौधे उग गए हैं। किसके? बीन्स के। वो थोड़े ही दिनों में उसमें बीन्स लग गई हैं, समझ गए? तो इसी तरह से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो, हमारा तो ऐसी जन्म हुआ है, हम किसी काम के ही नहीं हैं, है ना? कोई भी हमारे हम सेवा नहीं कर पाते, मतलब अपने आप को ये निकृष्ट नहीं समझना चाहिए कि भगवान की, जैसे कई लोग कहते हैं भगवान पे, हमारे पे तो कृपा ही नहीं है। जी आप पे कृपा हो गई है, आप पे कृपा हो गई है कि नहीं, इसलिए आपको भक्ति मिल रही है? आप, हमारे पे तो कृपा ही नहीं है। गलत है ये, भगवान की कृपा सबके ऊपर है, सबके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान सबके पिता हैं, वो सबसे स्नेह करते हैं, इक्वल। हम अगर उनकी कृपा को रोकते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा नहीं वैसा हो, ये अच्छा है, अपना दिमाग लगाते हैं, हम समर्पण में हम अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं, तो वहां गड़बड़ होती है। हम दरवाजे बंद कर देते हैं, है ना, रोशनी ना आए। भगवान की कृपा तो हर हालात में हर व्यक्ति को आ रही है, इसीलिए जैसे भगवान हमें रखे वैसे हमें रहना चाहिए, और हर हालात में भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए हमें। यह है समर्पण। तो इसी तरह से जब हम सरेंडर रहेंगे तो भगवान को हमारा पक्ष लेना ही पड़ेगा। जैसे उनके लिए तो दोनों बराबर थे, अर्जुन और कौरव, पांडव और कौरव बराबर थे, लेकिन पांडव का पक्ष लेना ही पड़ा। भगवान को पांडव का पक्ष लेना पड़ा ना, क्योंकि तो उनको समर्पित है वो पूर्ण रूप से। वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नारायणी सेना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। भगवान को लेना पड़ा। जैसे यहां पे कहा है कि पिता को अपनी पुत्र का पक्ष लेना ही पड़ा, क्योंकि स्वभाव से स्नेह है। इस तरह से भगवान जो है, जो उनके प्रति समर्पित होते हैं, उनके लिए वो बाधे हो जाते हैं। तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात कृतम विपाकम हृदय वाग वपुर भी विद्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। दाय भाग उत्तराधिकार हो जाता है हर हालात में जब हम भगवान की सेवा करते हैं। हृदय वाग वपुर भी, हृदय से, अपनी वाणी से और वपु से। तो ये हम यहां से, इस प्रसंग से हम सीख सकते हैं कि कैसे हम अपनी छोटी सी जो ईगो है, छोटी सी ईगो है बेकार की, कोई उसका कोई तुक नहीं है, फॉल्स ईगो है, देहात्म बुद्धि के कारण, ये समझने के कारण कि मैं एक देह हूं। हम देह तो है ही नहीं, ये शरीर तो नाशवान है। अगर शरीर भी है तो कौन सा शरीर? मान लो हम शरीर भी हैं तो कौन सा शरीर है? 5 साल वाला शरीर, 25 वाला शरीर, या 60 साल वाला? कौन सा शरीर है हम? शरीर भी तो बदल रहे हैं ना, तो कौन सा शरीर है? आप जब आए थे तो अलग शरीर लेके आए थे, जाओगे तो दूसरा डिफरेंट शरीर लेके जाओगे। पता है कैसे? कैसे समझाओ? जब आप आए थे क्लास में बैठे थे तो शरीर अलग था आपका, जब क्लास से उठोगे तो अलग हो चुका होगा, कैसे कपड़े छोटे हो जाएंगे, फिर कैसे पता कैसे लगेगा। वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। हर पल जो है हमारा शरीर बदल रहा है, है? अगर बाल गिने तो हो सकता है कि पहले 1000 बाल सफेद थे, जब क्लास में बैठे थे जब निकलोगे तो 1001 होंगे। गिनेगा कौन, बदल तो गए है कि नहीं। तो इस तरह से बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता जा रहा है। तो को हम शरीर है ही नहीं, कौन सा शरीर है, है ना, शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। और शरीर के भाव के कारण मैं ये हूं, इसके कारण जो है अहंकार आता है हमारे में, फॉल्स ईगो आती है और जो हमें कष्ट देती है। तो जहां हमें मौका मिले फॉल्स ईगो के टूटने का, तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ये जो है ना फॉल्स ईगो तोड़ दी तूने, मैं बहुत फन्ने खा समझता था अपने आप को, लेकिन आपने कृपा की और मेरी फॉल्स ईगो तोड़ दी। योग्यता विचारू किछु नाही पाई तोमार करुणा सार। योग्यता क्या है, तुम्हार करुणा सार, इनकी प्रभुपाद जी की आचार्यों की करुणा है, कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, सच बात है, फैक्ट है, इनकी करुणा है। इनकी करुणा के कारण जो है इन्होंने इतना बड़ा अरेंजमेंट किया, किताबें लिखी, मंदिर बनाए, शिष्य बनाए, क्या कुछ नहीं किया, करुणा, इनकी करुणा है, हमें पकड़ लिया। जो हम कहां पकड़ में आने वाले थे, कलयुगी जीव है। जैसे मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मैं कहां डॉक्टर बना हुआ था, है? डॉक्टरों को तो सिखाते ही हैं शरीर के बारे में, पहले ही जब जाओ पहले शरीर दिखाते हैं मरा हुआ, इसमें देखो ये नाड़ियां हैं, ये हैं, सारा खोल खोल के दिखाते हैं, कहीं आत्मा नजर आई आपको, सारा शरीर फाड़ के दिखा दिया आपको, काट पीट खुद कर ली, आत्मा नजर आई नहीं, नजर आई होती नहीं तो कहां से नजर आएगी। डॉक्टरों को तो पहले ही ये सिखा देते हैं, भाई शरीर है, शरीर को बचाओ, जब तक है बचाओ, और दवाइयों से इससे उससे हम शरीर को बचा सकते हैं, और एक दिन हम ऐसी दवाई पैदा करेंगे कि आदमी मरेगा ही नहीं। वेट करो वेट, हम रिसर्च चल रही है, ऐसी उल्टी एजुकेशन देते हैं। तो हमें भी पकड़ लिया प्रभुपाद जी के ये अरेंजमेंट ने, चलो जी लाइफ मेंबर बनाओ, हमें क्या लाइफ मेंबर बना दिया। हमने कहा अच्छा है लाइफ मेंबर, जो मैं थोड़ा ऐसे भक्त बनने के लिए थोड़ा लाइफ मेंबर बना था मैं, वो भक्ति तो कोसों दूर थी, मुझे कोई लेना देना नहीं था भक्ति से, मैं तो मेंबर बना था, इनके देखे बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हाउस, वृंदावन गया गेस्ट, तब मैं बात बता रहा हूं 1984 की, तब तो वृंदावन में सिर्फ कृष्ण बलराम मंदिर ही था, कुछ नहीं था, और कुछ नहीं था, आप जानते नहीं ना, मैंने देखा है अपनी आंखों से। तो जब मैंने कृष्ण बलराम मंदिर का गेस्ट हाउस देखा तो मैं तो कहा अच्छा, और उन्होंने बताया भैया ये एक गेस्ट नहीं है हाउस, ऐसा नहीं है, दुनिया में बड़े ऐसे ऐसे गेस्ट हाउस हैं, और आप कहीं भी जाके 3 दिन रह सकते हो, और आपको पैसे सिर्फ देने हैं 3,333 रुपये। मैंने कहा तो बड़ा अच्छा सौदा है यार, बड़ा अच्छा बिजनेस है, लाइफ लॉन्ग, और हम आपको किताबें भी देंगे, हम आपको ये भी देंगे, वो भी देंगे, ये भी देंगे, मैगजीन भी आएगी। मैंने कहा तो कोई नुकसान नहीं है, है? आम के आम, गुठलियों के दाम, दान का दान, फायदे का फायदा। मैंने तो कहा लो जी, मैंने कहा लेकिन एक बात है, अभी अभी मैंने प्रैक्टिस शुरू की है प्रभु जी, मैं बनना तो चाहता हूं लेकिन पैसे तो है नहीं मेरे पास बैंक में इतने, वो भी रास्ता नहीं, नो प्रॉब्लम, आप इंस्टॉलमेंट में बन जाओ, आप ऐसा करो एक चेक दे दो, मुझे इतना याद है मैंने 800 या 600 रुपए का कुछ चेक दिया था, शायद 800 रुपए का, और मैंने सोचा कि जान छोड़ देंगे 800 रुपए के बाद, सारी किताबें भी देंगे सब कुछ देंगे। हालांकि मैंने उनको देखो कितने एंथुजियास्टिक होते हैं, मैंने तो उनको कह दिया था वहां पे, लेकिन वो तो घर आ गए जी मेरे, जैसे मैं घर पहुंचा 2-3 दिन बाद मैं घर पहुंचे हुए, पता नहीं कहां से एड्रेस ले लिया क्या ले लिया, घर पहुंच गए मेरे सरस्वती विहार, सारा कुछ लेके किताबें लेमिन, मैंने तो उनको यही कहा था मैं बनना चाहता हूं, बस बनना चाहता हूं का मतलब थोड़ा कि कल बन जाऊंगा मैं, सब कुछ लेके पहुंच गए, मुझे मजबूरी में चेक देना पड़ा जो मैंने कहा था, मजबूरी में बना, क्योंकि जब मैं वहां था तो वातावरण और था, जब घर आया तो बदल गया, फिर मैंने कहा चलो देखेंगे यार और भी कई खर्चे हैं, कहां इनको दें, दान बाद में देंगे, तो ये पकड़ लिया देख लो। फिर एक वो बंदा जिसने मुझे मेंबर बनाया वो मेरे मगर पड़ गया, आप आओ जी। अच्छा अब मैं कहां जाऊं, क्योंकि मंदिर यहां थोड़ा था, मंदिर तो था ग्रेटर कैलाश, मैं रहता था यहां सरस्वती विहार, वो जी हर संडे को मुझे बुलाता था। अब देखो यहां पे भी कैसे लालच ने पकड़ा, प्रभुपाद जी कैसे कितने तेज हैं। वो जो व्यक्ति था वो था मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और वो मुझे सैंपल्स दिया करता था फ्री में, क्योंकि उसको तो सैंपल्स देने ही थे डॉक्टर्स को, तो कहता था चलो अपने दोस्तों को दे दो, और वैसे भी कृष्ण भक्त था, उदार था, चैरिटेबल था। अब मेरी तो नई नई प्रैक्टिस थी, मुझे तो सैंपल तो बड़े अच्छे लगते थे, ग्राहकों को बनाने के लिए, क्लाइंट बनाने के लिए सैंपल्स तो बड़े अच्छे हैं, तरीका है। अब वो मुझे बुलाता था इसलिए कि आप ग्रेटर कैलाश आओ डॉक्टर भाटिया, तो मैं आपको ना वहीं पे सैंपल्स की पेटी दे दूंगा। मैं ग्रेटर कैलाश मंदिर जाता था सैंपल्स की पेटी लेने, मैं थोड़ा वहां जाता था कुछ सुनने। देखो कितने प्रभुपाद जी कितने चलाक हैं, देखो कैसे पकड़ते हैं हमारे जैसे गटर में पड़े हुए लोगों को। कोई इंटरेस्ट नहीं था मेरा। अच्छा फिर जब वहां गया एक इंटरेस्ट पकड़ लिया, खाना इतना अच्छा लगा जब उसने मुझे पहली बार बुलाया वो लालच में, सैंपल्स के लालच में, तो जब मैंने प्रसाद लिया तो मैं तो ऐसे घूम गया। मैंने कहा ये भांग मिलाते हैं, चरस मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं इसमें, सच कह रहा हूं अपने दिल की बात बता रहा हूं आज आपको। मैंने कहा यार जीवन में मैंने ऐसे बेतो, जब नशा किया था मैंने तब ऐसे घूमता था सिर, ये कैसे, सच कह रहा हूं पहली बार जब मैंने प्रसाद खाया घूम गया मैं ऐसे, क्या। और तब सीन अलग था, बहुत अलग था सीन, अभी तो ऐसा सीन नहीं था, ओ जी आओ जी प्लेटें लेके आओ चलो चलो चलो, ओ जी ऐसा सीन ही नहीं था, ऐसे बिठाते थे, इतने प्यार से खिलाते थे प्रसाद, थोड़े से लोग होते थे, मुश्किल से 40-50 लोग होते थे संडे फीस्ट में बस, और ऐसे बिठा के, और क्या पनीर की सब्जी, हलवा, क्या खाते चले जाओ, यहां तक खा लो, कोई मना ही नहीं है। ये नहीं कि हलवा नहीं मिलेगा जी, हलवा खत्म जी, नहीं खत्म होने का कोई चीज का नाम है, पनीर खाओ 10 कटोरियां लाओ पनीर, ऐसा था। तो मैंने भी खाया जहां तक, क्योंकि इतना टेस्टी लग रहा था, यहां तक खा गया और मेरा ऐसे दिमाग घूम गया। अब इस चीज ने मुझे पकड़ लिया, अब मैं जाता था चाहे वो हो चाहे ना हो, वो सैंपल सब हट गए, सैंपल तो हट गया, अब इसने पकड़ लिया प्रसाद ने। अब मैं 2 बजे पहुंचता था, मुझे पता था 1 से 2 लंच इनका, 1 से 2 प्रवचन होता है, तो इतनी जल्दी जाके क्या करना है, 2 बजे पहुंच जाऊं वहां पे, 2 बजे सीधे प्रसाद पहुंचता था। फिर गुरु महाराज इनके घर में आए तो मुझे इसने घर में बुलाया, तो ये जब बुलाता था जाता था क्योंकि सैंपल्स मिलेंगे, कहीं भी बुलाए, घर बुलाए, जहां मर्जी बुलाए। तो गुरु महाराज का लेक्चर, कनाडा से आए थे हिजुलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज लेक्चर दे रहे हैं, और मैं बाहर बैठा, जैसे यहां लेक्चर रहा ना अभी, पता नहीं कई लोग बाहर बैठे होंगे, मैं भी उन्हीं में से था, वहां बैठा हूं कुर्सी डाल के पीछे, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई देगा क्या, सुनना ही नहीं चाहता तो सुनाई कहां से देगा। एक बात ना मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे कर गई, वो कह रहे हैं कि अगर आप चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो इस मंत्र का जाप करो, महामंत्र का जाप करो। ये बात मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई, मतलब सारे लेक्चर में एक बात बैठी। तो चिंता से तो मैं पूर्ण रूप से ग्रस्त था, क्योंकि अभी भी मैंने MBBS किया था, समझ नहीं आ रहा था नौकरी करूं प्रैक्टिस करूं क्या करूं MD करूं, बहुत चिंतित रहता था, घर वाले रोज कोसते थे कुछ करता नहीं है तू, कुछ करता नहीं है, बहुत टेंशन में रहता था, नींद भी नहीं आती थी। तो मैंने कहा यार ये तो मंत्र बड़ा अच्छा है, वो लेकिन मंत्र हो कौन, सुना ही नहीं मंत्र कौन सा है, अब मैं मंत्र ढूंढने लगा, मंत्र कहां से मिले, थोड़ा आपकी तरह पंजाबी बाग चले जाओ जी, भक्ति वृक्ष चले जाओ, रोहिणी चले जाओ, ये सीन थोड़ा था, कुछ सीन दूर दूर तक कोई डिवोटी नहीं नजर आता था, दूर दूर तक, यहां से कितनी दूर तक आप नजर लगा लो कोई डिवोटी नहीं, तो कहां से ढूंढूं, मंत्र कहां से मिले, मंत्र की भावना तो हो, मंत्र मिले कहां से। भगवान ने यहां पर अरेंजमेंट किया, एक पेशेंट के घर गया, पेशेंट देखने के लिए बीमार, उसके घर में लगा हुआ था ऐसे ही बिल्कुल, उसके एक कमरा था उसमें ऐसे बड़ा बड़ा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओ मैंने कहा यही तो मंत्र है, यही तो बोल रहे थे वो, वहां से मेरी आध्यात्मिक जीवन शुरू हुआ। तो कैसे पकड़ा देखो प्रभुपाद जी ने, कैसे कैसे है ना, ये करुणा है इनकी, कहां कहां क्या योजनाएं बना के कर रहे हैं, ये करो वो करो, जन्माष्टमी मनाओ धूमधाम से मनाओ। ये सारे जो प्रभुपाद जी ने अरेंजमेंट किए हैं इसीलिए किए हैं कि बद जीव जो है, सारे के सारे बद जीव, हर तरह के जीव, ये करुणा है प्रभुपाद जी के पास। जो करुणा है बिल्कुल वैसी करुणा है जैसे भगवान कृष्ण की है, सबको सबको लेके जाना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते किसी को भी। योग्यता विचारू किछु नहीं पाए तो मारे करुणा सार। हमारे में क्या योग्यता है, हम तो भटके हुए मेटेरियलिस्टिक टोटली। तो ये है हमारे पिता, ये है उनके स्वभावता हमारे प्रति वो है, लेकिन हमें जो कहे ना, जो उनके आश्रित होते हैं उनको तभी तो करेंगे, है ना। जैसे आश्रित, जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोई बच्चा है गिर गया है, डूब गया है, और आप उसको बचाने जा रहे हो, और उसने अगर आपकी बाजू पकड़ ली तो कैसे बचाओगे, वो तो छोड़ोगे ना एकदम, आपको डूबो देगा वो, उसको समर्पित होना पड़ेगा ना। तो इस तरह से अगर हम समर्पित भाव से गुरु के प्रति, वैष्णवों के प्रति, भगवान के प्रति हम जाएंगे तो स्वभावता है, उनमें स्वभावता स्नेह है, हमें पकड़ लेंगे वो। यही कुछ थोड़े से विचार हैं, समय हो गया, आप लोगों का कोई प्रश्न है तो 5-7 मिनट और आगे ले सकते हैं, पुण्य कृष्ण जी दे सकते हैं थोड़ा सा 5 मिनट, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे प्रसादम। हाँ
हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले तो धन्यवाद, आपने सेल्फ ईगो के ऊपर बहुत अच्छा आपने बताया। और प्रभु जी यहाँ हम देखते हैं कि शुक्राचार्य जैसा इतना बुद्धिमान ब्राह्मण, मतलब कि इतने हाई लेवल, जो उनके देव इवन बृहस्पति जी के लाइक पुत्र भी उनसे सीखने आते हैं, तो लाइक वो खुद एक पुत्री के मुंह में आकर, मतलब लाइक वो ऐसा करते तो आजकल के जीवों का फिर क्या कहना, वो तो अपने बच्चों के लिए इतना।
yes, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें भक्ति के जो नियम हैं, भक्ति के जो भक्त हैं, उनसे बहुत हमारा गाढ़ संबंध होना चाहिए, है ना। इसीलिए भक्तों का साथ हमारा आदान प्रदान होना चाहिए, भक्तों से मित्रता होनी चाहिए, भक्तों से मित्रता करने के लिए हमें सारे प्रयास करने चाहिए कि हमारे मित्र बन जाएं। उनकी अगर पूजा करनी पड़े तो पूजा भी करो, कुछ भी करना पड़े, उनके चरणों का प्रशालन करना पड़े वो भी करो, मित्रता हो जाए, कुछ भी करना पड़े तो भक्तों से हमारी मित्रता हो जाएगी तो निकाल लेंगे, वो ऐसी चीज से भी निकाल सकते हैं, वो ताकतवर है, वो हमें इस बंधन से भी निकाल लेंगे। क्योंकि जो हमारा असल में मोह है वो अज्ञानता है ना, क्योंकि हम तो एक जीवात्मा है, तो जीवात्मा का तो संबंध भगवान के साथ है, ये तो शरीर के संबंध के है ना, लेकिन क्योंकि हमारा वो संबंध प्रगाढ़ नहीं है तो यही संबंध हमें बड़ा लगता है ना। नहीं तो हमारे तो सारे सब बच्चे हमारे एक थोड़ा है, कई बच्चे हैं हमारे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मैंने अपने 4 बच्चों को छोड़ा और हजारों बच्चे मिल गए। श्रील प्रभुपाद जी को जब सफलता मिली उनके अपने बच्चों के कारण थोड़ा मिली, और श्रील प्रभुपाद जी जब इस संसार को छोड़ के गए तो इतना अच्छा जो वातावरण था वो उनके शिष्यों ने बनाया ना, उनके बच्चे तो शायद पता नहीं उस वक्त आए भी कि नहीं आए, याद नहीं है मुझे। तो हम ये भावना जब हमारे में तभी आएगी जब हम भक्तों से अपना संबंध बनाएंगे कि मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और तब फिर हमारा नहीं रहेगा मोह। देहात बुद्धि के कारण हमारा मोह है, मैं शरीर हूँ और शरीर से उत्पन्न सारी चीज़ें मेरी हैं, हालांकि वो भी एक जीवात्मा, और इससे हम फायदा नहीं करते उनका, हम नुकसान ही कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक जीवात्मा है, वो भी देह नहीं है। आप देहात्म का बोध करके जैसे अब ये प्रॉब्लम ही तो खड़ी करेंगे, अभी इनका क्रोध प्रॉब्लम ही देहात्म बुद्धि के कारण। तो देहात्म बुद्धि जो है ये भगवान की भक्ति से ही जाती है, भगवान के भक्ति भगवान की कृपा से ही, क्योंकि ये जो है भगवान की शक्ति है ना, माया भगवान की शक्ति है, तो भगवान की शक्ति है तो भगवान ही है एक तरह से। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं माया से हमें डरना चाहिए, तो भगवान की शक्ति है, आप माया को पार नहीं पा सकते, कोई भी नहीं पार पा सकता। तो भक्तों के संग में रहेंगे हम तो फिर हमें ये आभास रहेगा। ठीक है,
तो यहाँ पर पिता की ड्यूटी क्या है कि मतलब अपने बच्चों की इच्छाएं जो है पूर्ण करना जरूरी है या नहीं है, मतलब पिता की ड्यूटी क्या है यहाँ पर?
तो शास्त्रों में तो ये लिखा है पिता माता की यही ड्यूटी है कि वो दोबारा इस भव बंधन में ना पड़े। हम मनुष्य हैं, हम पशु नहीं है। पशु अगर माता पिता हैं तो उनकी ड्यूटी है कि उनका आहार निद्रा भय मैथुन का ध्यान रखें, उनको
चिड़िया का ड्यूटी है कि उसको दाना खिला दे, एक कबूतर की ड्यूटी है उसको अंडे आ गए तो उसको बैठा रहे उसके ऊपर ताकि बच्चे ना तब तक ना निकलें। लेकिन हम मनुष्य हैं, मनुष्य का कर्तव्य है कि ऐसा हम उनको वातावरण दें कि वो भव बंधन में दोबारा ना आए, ये हमारी ड्यूटी है ना। तो उसके उस रास्ते पे चलने के लिए जो भी उनकी जरूरतें हैं वो पूरी करनी चाहिए हमें। थैंक यू। आपका शुभ नाम? हाँ जी,
वसु श्रेष्ठ दास
भीष्म पितामह।
धन्यवाद प्रभु जी।
धन्यवाद
प्रभु जी, अपने
आपका धन्यवाद। आपके दर्शन हो गए, सीन ऐसे चार्ज हो गया, एकदम शरीर ऐसे चार्ज हो गया। मैंने देखा ही नहीं था, एकदम देखा ना, प्रकट हो गए कैसे नारद मुनि जी की तरह।
धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत सुंदर प्रवचन था। तो अपने परिवार के सदस्यों के लिए स्नेह होना तो
स्वाभाविक है,
स्वाभाविक है। तो ये स्नेह कहीं आसक्ति ना बन जाए तो क्या डिफरेंस है, कहां अपने आपको पहचाने की स्नेह?
वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है इनका। श्रील प्रभुपाद जी इसका उत्तर दे रहे हैं भगवद गीता के 13वें अध्याय के 8वां 9वां 10वां 11वां जो श्लोक है उसके पापड़ में, क्योंकि भगवान उसमें कह रहे हैं कि हमारा इससे विरक्ति होनी चाहिए, ये ममता नहीं होनी चाहिए पुत्री से, पुत्र से, घर से, घरवाली से नहीं होनी चाहिए, जो ये ज्ञान है। तो प्रभुपाद जी वहां समझा रहे हैं कि ये स्वाभाविक है, ये स्नेह स्वाभाविक है पुत्र पुत्रियों के लिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उनको यही स्नेह का कैसे इस्तेमाल करना है कि हमें उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस देनी है, क्योंकि अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस देंगे तो घर का वातावरण जो है अत्यंत सुखमय हो जाएगा, वातावरण जो है अत्यंत सुखमय हो जाएगा, नहीं तो कलह ही रहेगी। तो वातावरण को, घर का वातावरण सुखमय हो तो इसीलिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस का वातावरण देना है। उसके लिए हमें क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का हम रोज जप करें, भगवद गीता भागवतम रोज पढ़ें सब मिलकर, अर्चय विग्रह की सेवा करें सब मिलकर, और प्रसाद लें, हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद इकट्ठे लें। इस तरह से जब हम करते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये है असली स्नेह, फिर हम वो आसक्त नहीं है, फिर हम भौतिकता में नहीं पड़ेंगे, फिर हम घर में रहते हुए भी हम घर से विरक्त हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं फिर संन्यास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब घर में रहो। ओके, तो धीरे धीरे लोग उठते जा रहे हैं, शायद प्रसाद और दूसरे के भी काम है, नो प्रॉब्लम। तो आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, आप सब लोगों ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना इसलिए मैं कुछ कह भी पाया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।